नमस्कार श्रोताओं,
ऑन क्रिकेट ऑफ टॉपिक
के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राहुल भास्कर अपने साथी उज्जवल ग्रोवर और अभिषेक देशपांडे और देसी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। पहला एपिसोड के बारे में हमें श्रोताओं से काफी अच्छा फीडबैक मिला, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो फीडबैक इसमें इंकॉर्पोरेट कर पाए। आपके कॉमेंट्स के लिए धन्यवाद। तो इस वर्ल्ड कप इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1996 के वर्ल्ड कप के बारे में, जो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने साथ में होस्ट किया था। काफी रोचक वर्ल्ड कप था, दो ग्रुप्स थे और 12 टीमें कुल थी, तो पिछले वर्ल्ड कप से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे जो एड्स हमने इस वर्ल्ड कप में देखे, पेप्सी ने जो कैंपेन लॉन्च किया कोक के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में, जो विश्व कप का माहौल बना था, एक्साइटमेंट था हमारे बचपन में, जो हमने विश्व कप में देखा किस तरह से एक तरह से पूरा देश जुट गया था कि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और उम्मीदें थी कि टीम जीतेगी इस बार वर्ल्ड कप। हमारे बचपन की अटखेलियां जिसमें हम सोचा करते थे कि काश इंडिया और पाकिस्तान की टीम साथ में खेले, तो वो इस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले सार्थक हुआ। बात करेंगे भारत के सफर के बारे में, मनोज प्रभाकर की जो धुलाई की गई, जडेजा के छक्के, भारत पाकिस्तान का वो ऐतिहासिक मैच, सचिन और वॉन का जो वांकड़े में पहली बार द्वंद हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में किस तरह से हमारा कैंपेन एंड हुआ। बात करेंगे साउथ अफ्रीका का कंटिन्यूस बैड लक के बारे में इस वर्ल्ड कप के बारे में, मोहाली में वॉन का जादू और बेवन का वो रूप जो उन्होंने अपने करियर के थ्रू आउट मेंटेन करके रखा, केनिया की सरप्राइज विन ओवर वेस्ट इंडीज, और बात करेंगे इंडिया में जो स्टेडियम्स का अपग्रेड किया गया, ये पहली बार था जब हमने देखा कि डे नाइट मैचेस भारत में इतने बड़े पैमाने पर खेले गए। पहले सिर्फ ईडन गार्डन्स और मोहाली ही डे नाइट वेन्यूज थे, पर इस वर्ल्ड कप के दौरान सारे वेन्यूज को अपग्रेड। पर सफर की शुरुआत करने से पहले हम एक ट्रिविया क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जिसका जवाब मिलेगा एपिसोड के एंड में। तो सवाल ये है कि दिलीप वेंगसरकर, जो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स के नाम से भी जाने जाते थे, उनका निकनेम कर्नल कैसे पड़ा? यहाँ दिलीप वेंगसरकर जो भूतपूर्व कप्तान भी थे, उनका निकनेम कर्नल कैसे पड़ा, इसका जवाब एपिसोड के एंड में। तो अभिषेक, बात करते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में। हम बात कर रहे थे पेप्सी की, उस कैंपेन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे शो।
बिल्कुल बिल्कुल। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? ऐसे
बिल्कुल ठीक, बढ़िया
बिल्कुल। हेलो उज्जवल, होप एवरीथिंग इज गुड।
हेलो, एवरीथिंग इज वेरी गुड, थैंक यू।
गुड गुड। तो एक और टॉपिक राहुल, बिफोर वी टॉक अबाउट पेप्सी, आई वुड लाइक टू ऐड, हम बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम बात करेंगे, बट श्रीलंका की टीम से जुड़ी काफी यादें हैं, और फाइनल में स्पेशली सांका गुरुसिंघा और अरविंदा डिसिल्वा की पारियों की अवश्य ही हम बात करेंगे, बट एक और टॉपिक मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी लिस्ट में।
जी हाँ,
हाँ। तो 96 का वर्ल्ड कप, आपने पेप्सी की बात की, बट एक और जो मेजर स्पॉन्सर थे विश्व कप के, अगेन एक सुट्टे का ब्रांड था। तो अगर आप याद करें 92 का वर्ल्ड कप बेंसन एंड हेजेस द्वारा स्पॉन्सर्ड था, जो उस वक्त हमें पता नहीं था कि एक सुट्टा होता है, बट 96 आते आते तक मैं करीब 11-12 वर्ष का था, 11 वर्ष का था, और सुट्टा एक नहीं, मैंने फूकी नहीं, मैंने तो जीवन भर फूकी नहीं एक्चुअली, अभी तक छुई नहीं है, खरीदी है काफी, पर मैंने ये रियलाइज किया है कि वो पहली बार था जब एक ब्रांड विल्स नाम का, और मुझे काफी अटपटा सा लगा था कि सुट्टे का ब्रांड क्यों वर्ल्ड कप, क्या प्लेयर स्मोक करके फिर भागते हैं, मैंने तो सुना था ये हानिकारक होता है। पेप्सी के काफी सारे एड थे, अब मेरी दिमाग में एक्चुअली पेप्सी की काफी बहुत सारी टाइमलाइन है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस वक्त कौन सा एड था। एक एड था जिसमें शाहरुख खान घुंघराले बाल वाली विग पहन के आते थे, क्या ये वो वर्ल्ड कप था?
मुझे भी एक्चुअली टाइम के साथ रिकलेक्शन नहीं है कौन सा था, बट जितना मुझे याद है ये वो टाइम था जिसमें विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एड्स में आते थे, बिकॉज उनकी दोस्ती के ऊपर काफी ब्रांड्स ने कुछ कैश इन करने की कोशिश करी थी। एक तो ये एंगल था, दूसरा आई थिंक डिकी बर्ड का कोई एक था, आई डोंट रिमेंबर, वो पेप्सी था कि कोक था।
जी हां, एक्चुअली हुआ ये था कि कोक ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया था इस वर्ल्ड कप का, तो पेप्सी के लिए ये मेजर हार थी, तो उन्होंने इसको कोक को अटैक करने के लिए अपना टैगलाइन बनाया, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, तो इस तरह से उन्होंने दे वांटेड टू कैपिटलाइज ऑन द फैक्ट कि सारे मेजर क्रिकेटर्स पेप्सी स्पॉन्सर्ड थे, पर वर्ल्ड कप का स्पॉन्सरशिप कोक को मिला, तो पेप्सी ने जिसे कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर किया
बिल्कुल। बट व्हाट्सएप पे तो आजकल फॉरवर्ड आते ही हैं कि कोक और पेप्सी से तो सिर्फ टॉयलेट ही धोए जाते हैं, तो उसका और सही, बट हाँ अगर आप कुछ पीना है तो थम्स अप जरूर पीजिए, और उसमें थोड़ा अगर ओल्ड मॉन्क मिला सके तो फिर बात ही कुछ
और। आपने बात की अभी से एक बिल्स के बारे में, शायद पहले 3 वर्ल्ड कप प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी ने स्पॉन्सर किए, तो उम्मीद ये थी कि दर्शकों ने इंश्योरेंस खरीद लिया तो हमें थोड़ी सिगरेट बेची जाए।
बट उस समय काफी विज्ञापन आया, ऐसा नहीं था सिर्फ पेप्सी ही था, बट काफी ब्रांड्स आए। सिंगर होता था श्रीलंका की टीम का स्पॉन्सर, मुझे लगता था सिलाई की मशीन की स्पॉन्सर है, बट बाद में पता पड़ा सिंगर शायद और भी इक्विपमेंट बेचता है श्रीलंका में। मुझे लगा है ना श्रीलंका का देश इतना पिछड़ा हुआ है कि वो शायद सिर्फ सिंगर मशीन की कर रहे हैं, पर वो बाद में पता पड़ा कि सिंगर के और भी शायद डिवाइसेस बिकते थे श्रीलंका में। श्रीलंका से याद आया कि श्रीलंका की पृष्ठभूमि पे आतंकवाद के काफी बादल थे राहुल उस वक्त, और उसकी वजह से विश्व पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे उज्जवल, राहुल आप में से कोई भी?
माहौल ऐसा था कि एलटीटी का दबदबा था जाफना पेनिनसुला पर, तो काफी कोलंबो में आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उस दौर में, और वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इसका प्रोटेस्ट करने के लिए और थोड़ा आतंक का माहौल बनाने के लिए कोलंबो में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के चलते कारण काफी टीम्स में ऐसा भय का माहौल था कि कहीं मैच के दौरान प्लेयर्स की सेफ्टी पे इम्पैक्ट ना हो। श्रीलंका में कुल 4 मैचेस शेड्यूल थे, सारे ग्रुप मैचेस, तो श्रीलंका के जो गेम्स थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, कीनिया और जिम्बाब्वे अगेंस्ट वो शेड्यूल थे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने बैकआउट किया। इसके चलते थोड़ा सा सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पड़ोसी मुल्कों भारत और पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम एक फ्रेंडली मैच खेलें और दिखाएं कि श्रीलंका में अभी भी क्रिकेट खेला जा सकता है। तो हम जैसे बचपन में सोचा करते थे, ख्याली पुलाव पकाते थे कि काश इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन नहीं हुआ होता तो एक कॉमन टीम होती, सचिन और अफरीदी साथ में ओपनिंग करते, वसीम अकरम और श्रीनाथ ओपनिंग करते। तो ऐसा इस मैच में लगभग सिद्ध हो गया। उस टाइम तक अफरीदी तो नहीं थे, पर इंडिया और पाकिस्तान ने कॉमन टीम बनाई और श्रीलंका के अगेंस्ट खेले और उस मैच में इंडिया की टीम विजयी रही। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था, पर हालांकि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज फिर भी नहीं खेले इस वर्ल्ड कप में, श्रीलंका में उन्होंने वॉक ओवर दे दिया दोनों मैचेस, पर दिस वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस।
काफी रोचक किस्सा है, मुझे इस बारे में पता नहीं था एक्चुअली कि ऐसा कोई मैच हुआ था, यानी अपनी तीनों टीमों को मिला के। बट अफरीदी के बारे में आपने कहा, अफरीदी को याद करके मुझे हमेशा अश्वत्थामा की याद आती है, क्योंकि अश्वत्थामा भी सदियों तक जिए हैं और सदियों तक भटक रहे हैं। मुझे लगता है अफरीदी भी उन्हीं तरह है, बस उनके सर पे कोई मणि नहीं लगा, पर वो भी शायद अफरीदी की तरह अश्वत्थामा की तरह सदियों तक जिएंगे और उनकी उम्र सिर्फ 19 साल हुई रहोगी तब तक।
पीटर पैन भी कह सकते हैं उनको,
या मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई भी लीप ईयर में पैदा हुए और 25 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, बट वैसे 100 की उम्र थी, पर उनके और भी कारण है। वो कुछ ऐसी चीजें पीते थे जिससे उनकी उम्र बढ़ गई, जैसे हम थम्स अप के शौकीन हैं, वो ओल्ड मॉन्क के साथ कुछ और ही लेना पसंद करते होंगे शायद, पर उस बारे में बाद में बात की जाएगी।
ठीक है, तो अब हम आते हैं के सफर के ऊपर। हम ग्रुप ए में थे, साथी टीमें थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और कीनिया। सफर हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहा, तो जो उसके बारे में आप श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे?
आई थिंक ये वर्ल्ड कप का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें जितने हाईज हैं उतने इंडिया के लिए लोज भी थे। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर क्लियरली एक उभरते हुए सितारे की तरह आए और सबको फिर रियलाइज हो गया एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप कि यार ये बंदा स्पेशल है, और इसी से जो 90s का दौर जो हम कहते हैं कि गोल्डन 90s, वो यही स्टार्ट हुआ था। शुरुआत तो ऑब्वियसली इंडिया ने सबसे पहला मैच तो केन्या के अगेंस्ट खेला था, विच वॉज लाइक अ वार्म अप गेम, आसानी से जीत गए। सचिन तेंदुलकर अगेन गॉट अ सेंचुरी चेजिंग। पर हाँ, मुझे ये इस मैच के बारे में ये याद है कि सारे बंदे कह रहे थे कि यार ये तो केन्या की पता नहीं कौन सी टीम है, पहली बार पहला वर्ल्ड कप था इनका और पता नहीं कितने रन बनाएगी, पर इन्होंने भी इंडिया के 200 रन बना दिए थे।
मैं काफी इंप्रेस था इनसे पहले मैच,
काफी इंप्रेसिव था इनका। यस, इनकी टीम कोऑर्डिनेशन कुछ चीजों में ये काफी ढीले थे, जैसे इनकी फील्डिंग बहुत खराब थी, और मैं 96 के इंडिया के टीम के हिसाब से कह रहा हूँ बहुत खराब थी, विच वॉज एक्चुअली बहुत खराब। बाकी आई थिंक बॉलिंग और बैटिंग तो उनकी काफी ठीक थी, उन्होंने काफी जैसे कि मैं बताया 200 रन बनाए। आगे जाके तो उन्होंने एक मैच जीता भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हुए इंडिया का मैच जो मुझे सबसे एक्साइटिंग मैच पूरे वर्ल्ड कप का लगा था, वो एक्चुअली श्रीलंका का मैच था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना हाईएस्ट स्कोर उस समय तक का 137 बनाया। आई थिंक 270 कुछ रन बनाए थे इंडिया ने बैटिंग फॉर,
279 बनाए थे। अजहर ने भी काफी अच्छा खेला था उस मैच।
हाँ 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 हाँ, एंड पर ये मैच ऑब्वियसली हम हार गए बिकॉज ये एक एंड इस मैच के बाद वॉज बेसिकली द राइज ऑफ श्रीलंका सॉर्ट ऑफ बिगैन
बिल्कुल बिल्कुल लाइक लाइक कर दी जयसूर्या और लिटिल कलू जैसे टोनी ग्रेग उन्हें बुलाते थे अकर को करियर ही खत्म कर दिया उनका इस मैच के बाद
जी हाँ, जी हाँ। और बहुत ही खतरनाक मैच रहा था उनके लिए। इनफैक्ट मुझे सचिन की पारी से ज्यादा याद तो मनोज प्रभाकर की गेंदबाजी ही है इस मैच में, क्योंकि जब तीन ओवर में उन्होंने 42 रन दिया, अब तो तीन ओवर में 42 काफी नॉर्मल साउंड करता है, पर उस जमाने में तीन ओवर में 42 काफी बड़ी ब्लास्फेमी ही थी। और उसके बाद मनोज प्रभाकर ऑफ स्पिन डालने आए थे अपनी सेकंड स्पेल में, जयसूर्या और कालू ने काफी धुलाई की, काफी ज्यादा धुलाई, और आई थिंक 50 ओवर ने इंडिया ने मार मार के 279 बनाए थे, बट श्रीलंका ने काफी जल्दी वो टारगेट पूरा कर लिया था। तो
हाँ, मतलब अजर भी पहले शुरुआत उनकी बहुत फास्ट हुई थी, बाद में रिकवर कर लिया था मनोज प्रभाकर, यू आर राइट। तो मैं जस्ट उनका स्कोर कार्ड खोला तो उन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए थे, क्योंकि बहुत ही बुरा माना
जाता, खराब होता
है, अनइमेजिनेबल था एक्चुअली, यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बिटाई भी हो सकती है। बाद में दे पुल्ड इट बैक, तो इवेंचुअली वो जीते तो शायद 49th ओवर में ही थे, बट यस इट वाज 279 को चेस करना इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया वाज कंसीडर्ड टू बी एन अचीवमेंट ऑफ सॉर्ट्स।
जी हाँ जी हाँ। और मनोज प्रभाकर से मुझे याद आया उज्ज्वल, आपने एक जैसे बात कही कि उनकी गेंदबाजी की हम चर्चा कर ही रहे हैं, पर एक जो उस समय हमने किस्सा काफी डिस्कस किया था कि मनोज प्रभाकर को पाप लगा है, और उसका कारण यह था कि उन्होंने गली क्रिकेट का एक अमर रूल ब्रेक किया था। हमारे क्रिकेट में जैसे वन टैप वन हैंड एक रूल होता था जिसपे हमने इस पॉडकास्ट का नाम रखा है, उस तरह एक और रूल होता था कि जिसकी पहले बल्लेबाजी आती है उसकी पहले गेंदबाजी नहीं आ सकती एंड वाइस वर्सा। और मनोज प्रभाकर आप याद करें तो उस मैच में पहले गेंदबाजी भी कर रहे थे और सचिन के साथ ओपनिंग, तो क्या उस चीज का पाप लगा उन्हें, क्योंकि वो काफी गलत माना जाता था, वो काफी बड़ा पाप था।
वैसे इस मैच में तो मनोज प्रभाकर ने बैटिंग भी बड़ी खराब करी थी, 36 बॉलों पे 7 रन बनाए थे।
देसी आप तो मुझे अभी बचपन के रूल्स के बारे में बात की तो हम इसके बारे में और बात करेंगे जैसे हमारा पॉडकास्ट बढ़ता है। मुझे एक और रूल याद आ रहा है पर खैर उसको पॉडकास्ट के थोड़े
बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान के अगले मैचेस के बारे में जल्दी से।
अगला एक और मैच जो इंडिया का काफी अच्छा था वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, लीग मैच था, और हम जीते तो नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया से हमारी जीत तब होती नहीं थी इतनी ज्यादा रेगुलरली जितना आजकल हम खेलते हैं, बट ये मैच भी बहुत अच्छा था। इसमें मार्क वॉ ने सेंचुरी बनाई थी और काफी फास्ट खेले थे वो भी। दिस ऑस्ट्रेलिया वाज बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग में हमने वापस चेस करते वक्त फिर सचिन तेंदुलकर वापस साहिद दामोदर उनके ऊपर होती थी तो उन्होंने फिर से 90 रन बनाए, बट फिर जैसे वो आउट हुए तो फिर ये चेज काइंड ऑफ डगमगा गया, फिर कभी लगा नहीं कि हम इस चेज में एक्चुअली रहते भी हैं।
मुझे तो अभी तक लग रहा था हम ये मैच जीते थे, मुझे समा मेरे दिमाग में था कि सचिन ने खेल दिया तो हम जीत गए। आई थिंक सचिन ने 90-95 कुछ रन बनाए थे,
90 रन बनाए।
हाँ, एक वॉन को आगे बढ़ के काफी बेहतरीन स्क्रीन की तरफ छक्का मारा था।
I think ये मैच राहुल को बहुत ज्यादा याद है बिकॉज मैं जब कॉलेज में भी था तो राहुल ये इस मैच के बारे में कई सारे बताते थे। ये एक्चुअली वो मैच था जिसमें जो आगे बढ़ के स्ट्रेट 6 मारते हैं सचिन तेंदुलकर एक लेग स्पिनर को, मतलब स्पेशली ओवर द शोल्डर बोलिंग करने वाले लेग स्पिनर को, तो वो स्टार्ट हुआ था। और ये इनफैक्ट कई लोगों ने इस शॉट को बाद में खेलने की कोशिश की, बट आई डोंट थिंक किसी की मेमोरी में ये शॉट होगा जितना अच्छा सचिन खेलते हैं। राहुल इस बारे में आपको बात?
बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से पहला मैच था जब तेंदुलकर और वॉन शायद अब उनका थोड़ा रुतबा बन गया, बनने लगा था धीरे धीरे कि हाँ तेंदुलकर उभरते हुए सितारे हैं। टेस्ट मैच में तो खैर वो स्टार प्लेयर बन ही चुके थे अपनी कैरियर की शुरुआत में, पर वनडेज में उन्होंने 94 में पहली बार ओपनिंग की और 2 साल हुए थे थोड़ा सा अपना करियर एज ए ओपनिंग बैट्समैन बना रहे थे, और वॉन ने 96 तक अपना थोड़ा सा छवि बनानी शुरू कर दी थी कि वो टॉप मोस्ट स्पिनर हैं वर्ल्ड में, कुंबले और मुरली इतने अच्छे नहीं है, एकदम मीडिया का भी हाइप था कि वॉन आ रहे हैं, वो एशेस की अपनी शानदार गेंद डाल चुके थे। तो तेंदुलकर ने आड़े हाथों लिया वॉन को और मेरे ख्याल से करियर की एंड तक अगले 10 साल तक डोमिनेट किया वॉन को इस मैच के बाद। काफी
बिल्कुल
काफी इंटरेस्टिंग राइवलरी रही दोनों में, आईपीएल में भी सचिन ने वॉन को अच्छी तरह डोमिनेट किया, तो ये उस राइवलरी की शुरुआत थी एक तरह से। अच्छा
बिल्कुल। और ये इस टूर में एक और रोचक चीज ये हुई थी कि शेन वॉन का शायद पेट खराब हो गया था, तो आई थिंक वो इसके अगले टूर में जब 98 में पहला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक लौता मैच हुआ था, अगर आप याद करें एक सिंगल टेस्ट मैच था जहां नयन मोंगिया ने 150 रन मारे थे और डेविड जॉनसन नाम के हमारे एक भूले बिसरे हीरो ने डेब्यू किया था जो उनका आखिरी मैच भी, उस टूर में वो एक्चुअली स्पेगेटी के फ्रोजन पैक्स लेके आए थे, तो ये टूर में आई थिंक इनका पेट भी खराब हुआ था ऐसा बोलते हैं। और और एक और किस्सा मेरे को पिछले पॉडकास्ट से याद आ रहा है कि हमने बात की थी, वेंकटपति राजू ने इस गेम में एक विकेट लिया था, तो वो मैंने कहा था मार्क
दो विकेट लिए थे इस मैच में उन्होंने एक्चुअली,
ओके दो, तो
रिकी पोंटिंग और मार्क टेलर का विकेट लिया था एक्चुअली।
रिकी पोंटिंग के लिए तो काफी शर्मसार मूवमेंट होगा, पर आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस बात को काफी हम बात कर चुके हैं राजू,
ठीक है। इसका अगला गेम इंडिया का फिर इंडिया जिम्बाब्वे के साथ था, जो कि इंडिया आसानी से जीत चुका था। हाँ, उसके बाद आया मेन क्वार्टर फाइनल्स का माहौल, जहाँ इंडिया और
बिल्कुल बिफोर वी गो टू क्वार्टर फाइनल्स उज्जवल, एक्चुअली जिम्बाब्वे से याद आया कि फ्लावर ब्रदर्स भी इसी वर्ल्ड कप में पहली बार आए थे, और पॉल स्ट्रैंग का भी शायद ये पहला वर्ल्ड कप था, अगर आपको याद हो, एक नन्हे से लेग स्पिनर।
जी जी जी, और मुझे याद है कि उनका था, मुझे नहीं पता फ्लावर ब्रदर्स दोनों टीम में थे भी कि नहीं, ये मुझे कभी कभी क्लियर नहीं है।
हाँ 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 हाँ, और हीट स्ट्रीक भी आई थिंक इस वर्ल्ड कप में आए थे,
हीट स्ट्रीक वाज द
यस यस, ओपनिंग गेंदबाजी स्विंग करते थे थोड़ी
जैकस केन्स और जैक कालिस के साथ, वो 90s के ऑलराउंडर की तिकड़ी बनाते थे।
यस जी जी हाँ, और सुनने में आया कि क्रिस केन्स फिलहाल न्यूजीलैंड में ट्रक ड्राइवर या उबर ड्राइवर का काम कर रहे थे, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, अरशद खान शायद उबर चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल, अगर आपको याद होगा काफी अगर आप अरशद खान और राजेश चौहान को आजू बाजू गेंदबाजी कराए तो आप नवरात्रि में है, गरबा चल रहा है अहमदाबाद में, एक तरफ से राजेश चौहान दौड़ते हुए आएंगे और एक तरफ से नाचते हुए अरशद खान, पर ठीक है वो तो एक अच्छे गेंदबाज भी थे।
एक और फरी बात मुझे जो याद आई इस वर्ल्ड कप की, इसमें हमारे स्क्वाड में एक सलील अंकुला नाम के एक बॉलर भी थे, जो कि इवेंचुअली क्रिकेट से बोर हो गए और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं दिखता ठीक हूँ तो मैं बॉलीवुड में जाता हूँ, तो उन्होंने एक्चुअली मूवी भी बोला।
और I think वो Z TV पे एक दो टीवी शोज में भी आया,
टीवी शोज में काफी ज्यादा आने लगे थे वो, टीवी शोज तो उनका करियर बन चुका था, बट इनफैक्ट एक दो मूवीज में भी वो आए हैं।
यह कहा जाता था कि वो एक सिफारसी प्लेयर है, शायद वो बॉम्बे के डीएसपी या एसपी के पुत्र थे, तो उन्हें क्रिकेट में मौका मिल गया।
ओ ऐसा, एक्चुअली उस वक्त मुंबई से काफी सारे सीमर आए थे, पारस मामरे थे, एबी कुरोविला थे जो 7 फुट के थे, बट स्पीड उनकी आई थिंक जाइंट गोंजालेस अगर आप याद करें ट्रंप कार्ड्स में दिखते थे, गेंदबाजी की स्पीड तो ड्वेन ब्रावो से भी स्लो थी या कीमो पॉल से भी स्लो थी मैं कहूंगा।
एक मैच जो हम मिस कर गए डिस्कस करना, वो था इंडिया और वेस्ट इंडीज का, हालांकि ये मैच जीत तो हम काफी आसानी से गए थे, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वेस्ट इंडीज ने पहली बल्लेबाजी करते हुए कुछ छोटा सा स्कोर बनाया था 173 का, ऑल आउट हो गए थे, इंडिया ने बॉलिंग काफी अच्छी करी थी, इसमें प्रभाकर जी ने एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग करी थी, विकेट लिए थे, पर जब इंडिया चेस करना की शुरुआत हुई तो अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करते थे, जडेजा काफी जल्दी आउट कर दिए गए, एम्ब्रोस ने बहुत सुंदर गेंदबाजी करके उनको बोल्ड किया था मुझे याद है, उसके बाद सिद्धू आए जो कि वन डाउन आते थे और वो भी काफी जल्दी आउट हो गए, तो इंडिया इसेंशली 173 या 74 रन चेस करते हुए 15 या 10 रन पे दो विकेट हो गए थे, उसके बाद एक बहुत अच्छी बाउंसर डाली गई जिसमें सचिन तेंदुलकर ने हुक करने की कोशिश की और वो सीधा ऊपर उछल गई बॉल और विकेट कीपर कैच लेने वाले थे, काफी सिंपल कैच था और उन्होंने वो छोड़ दिया, जैसे ही वो कैच छूटा तो फिर लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, बट अगर वो कैच हो गया होता तो ये बहुत ही निश्चित था कि इंडिया ये मैच जीतती थी नहीं,
वो तो पक्का होता। और क्या आपको याद है विकेट कीपर एक नाटे से थे वेस्ट इंडीज के, छोटे हाइट के थे, वही थे शायद इस
कोर्टनी ब्राउन वाज द गेस्ट।
हां हां, और उनके उनके कप्तान की हैट मुझे काफी पसंद थी, रिची रिचर्डसन, अगर आप याद करें हमेशा हैट पहनते थे,
वो हमेशा हैट पहनते थे
बिल्कुल।
और रिची का करियर काफी इंटरेस्टिंग था वैसे, वो कई बार जैसे इंग्लैंड के आपको याद होगा मार्कस ट्रेस्कॉथिक थे, तो जो काफी होमसिक हो जाते थे इसलिए फॉरेन टूर से ट्रेस्कॉथिक कम जाते थे, इसी तरह रिचर्डसन भी कई बार 2-3 टूर्स के बाद ही यूज्ड टू टेक अ बिग ब्रेक, तो इसलिए आपको अगर याद हो 94 में जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया का टूर किया तो उसमें कर्टनी वॉज कैप्टन थे, रिचर्डसन कैप्टन नहीं थे, तो रिचर्डसन काफी मस्त मौला मनमौजी टाइप खिलाड़ी थे, जो हालांकि विव रिचर्ड्स के कहा जाता था कि ओगले विव रिचर्ड्स हैं, पर वो अपने पेस पे ही जिंदगी जीना पसंद करते थे और मन नहीं हो तो टूर पे जाते ही नहीं थे, रेस्ट ले लेते थे।
वैसे इसमें मेरे और भी दो फेवरेट खिलाड़ी थे इस वक्त इस टीम में, एक तो थे काल हूपर, जो अगर आप अरशद खान राजेश चौहान के साथ किसी तीसरे इंसान को ऐड करना चाहेंगे तो वो उस डांस ग्रुप में काल हूपर हो सकते हैं,
मुश्ताक अहमद को भी मत भूलिए।
वैसे तो जयसूर्या का भी एंगल ऑफ एक्शन और बोलिंग का तरीका, फाइनल डिलीवरी पॉइंट तो जो उनका होता था वो भी वैसा ही था बिल्कुल, और वो लेफ्ट हैंडर काफी सुंदर लगता था देखने।
फिर एक एक काफी रिलैक्स से प्लेयर होते थे जिमी एडम्स, वो भी इस टीम में थे। ऐसा लगता था वो गुटका और पान चबा के खेल रहे, काफी लहराते हुए आते थे। और एक फिल सिमंस थे जो घुंघराले बाल और काफी मिलिट्री मीडियम गेंदबाजी और बैटिंग भी ओपनिंग या नंबर वन डाउन आते थे। तो काफी बढ़िया टीम थी, एक्चुअली मस्त टीम थी। आई थिंक ये आखिरी ढंग की वेस्ट इंडीज टीम थी, इसके बाद 15-20 साल लग गए उनकी T20 में थोड़ा महारत बनते हुए, पर ये एक मजेदार आखिरी वेस्ट इंडीज टीम थी मैं कहूंगा।
या जिमी एडम्स से याद आया, मेरे ख्याल से वो ओरिजिनल पैडमैन थे, उन्होंने 94 सीरीज में कुंबले और राजू को पैड कर करके एकदम हताश कर दिया था, और अपनी विकेट जाने नहीं दी।
मुझे लगा कि हिस्ट्री लेसन आ रहा है कि सच में उन्होंने भी अपने देश में कुछ पैड मैन जा सकी है।
चलिए तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आप उज्जवल क्वार्टर फाइनल पे पहुंच गए थे इंडिया के।
हाँ, तो क्वार्टर फाइनल का मैच मेरे पर्सनली फेवरेट ग्राउंड इंडिया चिन्नास्वामी में हो रहा था। और तब तो चलो हम अलग अलग जगहों पे थे, हम लोग खुद पर्सनली बैंगलोर में नहीं थे, बट मेरा एक दोस्त जो बहुत अच्छा दोस्त क्रिकेट इन्फो में मेरे साथ था, वो इस वर्ल्ड कप के लगभग सारे मैच देखने गया था। तो उसका कहना था कि इस पर्टिकुलर मैच की टिकटें बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स बाजार में मिल रही थी, तो ग्राउंड जैसे कि एक बढ़ती कंपनी की जब पब्लिक जाती तो ओवर सब्सक्राइब होता है, वैसे ही ये मैच में कैपेसिटी से 2 या 3 गुना लोग घुस चुके थे अंदर ग्राउंड में। पुलिस वाज बेसिकली हैड गिवन अप, यार अब ये कंट्रोल नहीं हो सकता, अब जो आ गया सो आ गया, चलने दो। पर यस, दिस हैज टू बी हैंड्स डाउन द वन सिंगल मैच जो हमारी मेमोरीज में बिल्कुल एच्ड है।
दिल दहल गया था, बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत बहुत,
जैसे कहते हैं कि शोले में देख लो कितने भी कैरेक्टर हो, गब्बर सिंह याद रहता है। तरह से इस मैच में भले जडेजा की पारी हो, सिद्धू ने 90 मारे थे, वो मैन ऑफ द मैच थे, पर बस एक ही बॉल है और एक ही कैरेक्टर है जो गेम को डिसाइड किया। हमारे
बिल्कुल
हमारे प्रिय वेंकटेश प्रसाद जो मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट स्लोअर वन डालते थे उस समय, क्योंकि
बिल्कुल बिल्कुल
वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी स्लोअर वन डिसीव करने वाली है, बट एक्सपेक्ट कर रहा होता था बैट्समैन और वो उससे भी स्लो आती थी, ये उनका स्किल था।
चेंज ऑफ भूपति के एक्सपर्ट थे वो। एक काफी सस्ता सा आनंद लिया गया यहाँ पर। आगे आगे बढ़िए उज्ज्वल, आपको।
हाँ, तो इंडिया की बैटिंग की पहली बात करते हैं। इंडिया शुरुआत तो इंडिया की काफी ऑर्डिनरी सी हुई थी, सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू। यहाँ तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि यहाँ पे इंडिया के बैटिंग ओपनिंग पेयर में सिर्फ सचिन एक कॉमन मल्टीपल थे, बाकी सब जगह सिद्धू जडेजा के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया। मुझे याद नहीं कि प्रभाकर ने
और मनोज प्रभाकर ने किया था, आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में किया था जहां घोर पाप हुआ था।
राइट राइट, तो ये काफी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, ओपन कौन करेगा, अजहरुद्दीन की शायद उस समय यूनिलैटरली डिसीजन बेसिस पे डिसाइड करते थे कि हाँ भाई आज तुम जाए आप जाए। तो फिर इवेंचुअली यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई थी इंडिया की, 90 रन पे पहला विकेट गिरा था, तो सचिन नाइट हुए थे। सिद्धू अच्छा खेल रहे थे काफी और फास्ट खेलने वालों में से थे, हालांकि इस मैच में उन्होंने किसी स्पिनर को आगे बढ़ के छक्का नहीं मारा, बट दैट वाज हिज सिग्नेचर मूव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडिया मिडिल ऑर्डर में इंडिया का स्कोर, तो मैं जस्ट टू सेट अप द पैटर्न, अराउंड 200 पे कुछ रन थे इंडिया के, 4-5 विकेट गिर चुके थे जब अजय जडेजा बैटिंग पे आए, और आखिरी कुछ ओवरों में उन्होंने वाकार यूनिस के ऊपर एक स्पेशल मुहिम जारी किया कि मैं इनकी हर बॉल को सिर्फ 6 मारने की कोशिश करूंगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वाकार यूनिस ने भी ये चैलेंज लिया, तो उन्होंने यॉर्कर पे यॉर्कर डालने की कोशिश की, थोड़ी लेंथ उनकी मिस होती रही और इस पे उन्होंने बहुत छक्के मारे। उनको मेरे ख्याल जितना जो याद है 3 छक्के मारे गए थे उनको।
तो मुझे ये क्लियरली याद है उज्जवल कि 2 ओवर में 27 या 26 रन दिए थे वकार यूनिस ने, और फिर 8 ओवर में 27 या 26 रन दिए थे, शायद 2 विकेट लिए थे, और आई थिंक उनकी जब स्पेल खत्म हुई तो 10 ओवर में 67 थे।
यस,
तो 40 रन पड़े थे आखिरी 2 ओवर में।
यस, तो काफी छक्के मारे थे उन्होंने एक्चुअली, और उस समय जब बिल्कुल इनकमिंग यॉर्कर्स को एक्चुअली डिग आउट करके डीप इन द क्रीज खेलने वाला जो ट्रेंड था, जो कि अब हार्दिक पांड्या और रसल और इन्होंने लोगों ने बना दिया है, काफी कॉमन कर दिया, वैसा तब होता नहीं था, तो दिस वाज लाइक एन इनोवेशन एट द टाइम। ऑल्दो चिन्नास्वामी का ग्राउंड आज बहुत छोटा है, उस समय वो उतना छोटा नहीं था शायद, पर बहुत अच्छे छक्के मारे थे और इंडिया ने एंड किया था गेम, और 287 रन बने थे 8 विकेट्स के लॉस पे और आफ्टर 50 ओवर्स।
बिल्कुल, और एक और बात उज्ज्वल जो मेरे को अचानक से याद आई कि वसीम अकरम इस गेम में खेले नहीं थे।
नहीं खेले थे, हाँ।
सुबह उन्होंने अचानक से मना कर दिया था या उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अलग अलग थ्योरीज आई थी कि कुछ मैच फिक्सिंग हो गई है, बुकीज का प्रेशर है, वो तो बोला ही जाता था पाकिस्तान इंडिया मैचेस के दौरान, पर आई थिंक जेन्युइनली उनकी फिटनेस ही सही नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो जरूर चैंपियन गेम वास्ते ऐसा गेम खेलते ही।
हाँ, पर ये बात सही भी है, जब 99 वर्ल्ड कप के बाद का समय या उसके जस्ट पहले का समय, जब ये इतना मैच फिक्सिंग स्कैंडल पूरा उभर के बाहर आया था, तो उसने थोड़ा बहुत तो कलंक लगा ही दिया हमारी हर मेमोरी पे, बिकॉज यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड से कि यार क्या पता क्या मैच कौन सा फिक्स था, क्योंकि उसके पहले के पीरियड के सारे मैचेस ही काइंड ऑफ अलेजेडली फिक्स्ड ही थे एक तरह से।
कई प्लेयर का तो नाम ही फिक्सिंग के साथ जोड़ के लिया जाता था, जैसे सलीम अली थे एक खिलाड़ी, सलीम अली तो कोई और थे, बासित अली एक थे अगर आपको याद होगा, इजाज अहमद एक थे, इन सबका तो नाम ही इनके साथ, ये सब खेले थे इस विश्व कप में। सईद अनवर तो खैर बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे जो खेले थे, पर ये सब भी खेले थे।
नहीं तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के रिप्लाई की। पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई और दोनों ओपनर्स आमिर सोहेल, सईद अनवर, जो कि काफी अच्छे ओपनर्स माने जाते थे, दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। हमारे स्लोएस्ट गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद की बहुत दुनाई हो रही थी और जमागल श्रीनाथ की भी बहुत दुनाई हो रही थी। फिर वो मौका आया जिसमें आमिर सोहेल ने ओवर कॉन्फिडेंस में वेंकटेश प्रसाद को स्क्वायर कट करके चौका मारा और उसके बाद उनको बल्ला दिखाया कि भाई अगली बॉल भी शायद मैं यही मारूंगा, या पता नहीं इसकी बड़ी थ्योरी थी कि वो क्या कहना चाहते थे। मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज कि वो कह रहे थे मैं फिर से मारूंगा तेरे को। फिर वेंकटेश प्रसाद ने कुछ खास चेंज ऐसा किया नहीं, बॉल स्ट्रेट ही डाली, बट आई थिंक उनसे हो गई और वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने अच्छे शब्द तो यूज नहीं किए होंगे पर और उनको बहुत अच्छा सेंड ऑफ दिया। फिर अंपायर सारे बीच में आ गए कि यार सेंड ऑफ मत दो, बट इससे शुरुआत हुई पाकिस्तान के, मतलब पहला विकेट गिरा।
जी हाँ।
तो बाद भी हालांकि आमिर सोहेल ठीक खेल रहे थे, बट फिर थोड़ी देर के बाद उनको भी श्रीनाथ ने आउट किया और उसके बाद उनकी वो कभी वो चेज में आप नहीं आ पाए बिटवीन वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले, टू सम एक्सटेंट वेंकटपति राजू, इन चार लोगों के कारण रेगुलर विकेट्स गिरते गए उनके और फिर कभी वो चेज में वापस ऊपर आ नहीं पाए। एंड 49 ओवर्स में 240 या 250 के बीच में कभी आउट हो गए और इंडिया जीत गया फिर।
और अगर आप याद करें तो जावेद मियादाद के हुए थे क्रीज पे और अगेन उन्होंने इस विश्व कप 92 के बाद रिटायरमेंट ले लिया था और अचानक से प्रकट हो गए थे फिर धरती पर कि हम खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो वो अंत तक टिके हुए थे और लोग बोल रहे थे अरे नहीं मियादाद है तो जिता देगा, बट वैसा हुआ नहीं। और एक और चीज थी कि एक पाकिस्तान का रोटेटिंग सिस्टम चलता था इस दौर में कि एक प्लेयर आता था उसकी जगह दूसरा प्लेयर आता था अगली सीरीज में, फिर तो इस विश्व कप में रशीद लतीफ खेले थे, उसका कोई लॉजिक नहीं था कि मोइन खान क्यों नहीं खेले, अगले टूर्नामेंट में मोइन खान खेलते थे उसके अगले में फिर राशिद लतीफ। अगर आप याद करें तो 96 में मिस्टीरियसली अक्रम गायब हुए, 99 में मिस्टीरियसली वकार गायब हुए काफी समय के लिए, अगर आप याद करें तो वसीम कैप्टन था, 2003 में तीनों वापस थे, तीनों यानी मैं शोएब अख्तर को भी गिन रहा हूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा।
अब पाकिस्तान की टीम और उसकी मिस्ट्रीज तो चलती ही रहेगी।
बिल्कुल,
मुझे याद है इस गेम में अजहर ने, आपने मियादाद की बात की तो अजहर ने रन आउट किया था मियादाद को और वो ऐसा रन आउट था कि अजहर खड़े थे शायद शॉर्ट कवर पे, वो आए और जहां से उन्होंने एम किया स्टंप्स की तरफ सिर्फ एक स्टंप दिख रही थी, तो वो ऐसा पहला रन आउट देखा मैंने कि वन स्टंप हुए
और अजय जडेजा की फील्डिंग तो खैर काफी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से भी, इनफैक्ट आज के हिसाब से भी उनकी फील्डिंग काफी अच्छी थी। अजहर का तो मुझे इनफैक्ट याद ही आता है कि वो अर्ली स्टेजेस में जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते या तो वो स्लिप में होते थे या गली में होते थे और वो अपने कॉलर जैसे ऊपर खड़े करके खड़े होते थे तो उनका वो बिल्कुल क्लियरली याद है।
और एक और चीज थी अजहर की, वो अपनी उंगलियों में कुछ सफेद ऐसी पट्टियां लगा के रखते थे, पता नहीं क्या होता था, और उसको ऐसे छूते रहते थे, लोग बोलते थे उसकी वजह से उनके हाथ से बॉल चिपक जाती है। हमारे टाउनशिप में भी काफी सारे लड़के थूक से कागज के ऐसे चिपटाई बना के अपनी उंगलियों में लगा के आते थे कि हम अच्छे फील्डर बन जाएंगे, उसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, हाथ में और जर्म्स फैलते होंगे बट उस समय जर्म्स की चिंता किसे थी। आई थिंक वो स्टाइल जो है अजहर का वो काफी यूनिक था, कॉलर खड़ी, वो थोड़ा स्वैग था चलने में एक निराला सा। अभी यानी कोहली वोली टैटू शैटू बना के आ जाते हैं आजकल के छोरे, श्रेयस अय्यर वय्यर भी टैटू शैटू लगा के बाल खड़े करके आ जाते हैं, बट वो अजहर वाली बात नहीं है।
ये बात तो बिल्कुल
अजहर वाली और ना वेब रिचर्ड्स का स्वैग तो किसी का ही नहीं।
हाँ, पर स्वैग तो असली सलमान भाई का ही है क्योंकि स्वागत तो उससे वही करते
हैं। हम आगे बात करते हैं,
बिल्कुल
चलता रहेगा।
हालांकि आगे आगे बात काफी शर्मनाक एंड की आने वाली है, विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज एक बिल्कुल हाई पॉइंट और उसके बाद अगला मैच बिल्कुल ही लो पॉइंट इंडियन क्रिकेट का। मैं मेरे तो मेरी लाइफ में मेरे को लगता है सबसे लोएस्ट पॉइंट इंडियन वर्ल्ड कप का, इंडियन क्रिकेटिंग का यही था, श्रीलंका के साथ क्वार्टर सेमीफाइनल था। आई थिंक टू सम इट अप इन वन सिंगल सेंटेंस इट वाज कि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी हमारी और लग रहा था हम जीत जाएंगे, और हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच तक जब श्रीलंका को 200-250 या कुछ चेस करने थे हमें, उसके बाद भी हमें लग रहा था कि अब तो ये गेम अपने हाथ में ही है। उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ है हमारा वो बहुत खराब था। इसको डिटेल में बात करते हैं, देसी आप उसकी शुरुआत करें। आई थिंक इस मैच के बारे में आप काफी बात करते हैं यूजुअली, तो आप शुरू।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैं देसी थोड़ा सा इंटरप्ट करना
चाहूंगा।
जैसे हमने बात की थी शुरुआत में कि मनोज सुहागकर ने गली क्रिकेट का रूल तोड़ा पहली बैटिंग और पहली बॉलिंग करके, इस गेम में अजहर ने रूल तोड़ा, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी।
यस
और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
बिल्कुल बिल्कुल, हां जी।
और 2003 वर्ल्ड कप में दादा ने भी वही गलती की, फाइनल में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। कि गली क्रिकेट के कुछ रूल है जो भूले नहीं चाहिए,
श्राप लगता है।
तो दादा ने तो एक पूरे कैरियर में गली क्रिकेट के एक रूल का वायलेशन किया है। हम गली क्रिकेट में कई बार सिर्फ लेग साइड का क्रिकेट खेलते थे, पर दादा तो ऑफ साइड में ही खेलते थे। तो उसकी एक थ्योरी ये भी है कि दादा इकलौते लेफ्ट हैंडर रहे होंगे गली क्रिकेट में, और बाकी बच्चे सब लेग में लपेटा मारते होंगे, बट दादा मजबूरी में अपना ऑफ साइड डेवलप कर गए कि अब तो उन्हें तो ऑफ में ही खेलना है क्योंकि उनका ऑफ है। और उस जमाने में तो खैर लेफ्टी वालों का कई बार तिरस्कार भी होता था, अब तो बड़ा नॉर्मल माना जाता है कि लेफ्टी होना एक नॉर्मल चीज है, पहले वो भी एक अजीब चीज मानी जाती थी। बट इस मैच पे आते हैं, काफी रोचक क्षण थे। अगर आप याद करें तो पहली ओवर में ही जवागल श्रीनाथ ने अपने कंधे को तोड़ के दो विकेट ले लिए थे,
दोनों विकेट ले लिए थे, दोनों बड़े खिलाड़ी
थर्ड मैन पे कैच थे। हाँ, एक आई थिंक प्रसाद ने कैच लिया था, एक आई थिंक राजू वाजू किसी ने कैच लिया, हाँ किसी ने कैच लिया था। तो कालू और जयसूर्या पहले ओवर में धराशायी, उसके बाद असांका गुरुसेना, जो अगर आप एक उनको देखते ही कोई गीत याद आता है तो वो अभी सिम्बा मूवी का आंख मारे याद आता है, वो काफी आग ब्लिंक करते थे अगर खेलते टाइम, और वो भी काफी यानी अलग टाइप के खिलाड़ी थे, च्युइंगम काफी चबाते थे। और उसके बाद इस मैच में अरविंदा डिसिल्वा, रोशन महानामा और रणतुंगा ने थोड़ी कमान संभाली, तिलक रत्ने आई थिंक उन्होंने भी 30-40 रन बनाए, आई थिंक उन्होंने एक डिसेंट स्कोर पोस्ट किया, विच वॉज अराउंड 250, विच वॉज एक्चुअली अ लॉट इन दैट एरा। बट ईडन गार्डन था, अजहर के काफी अच्छा ग्राउंड माना जाता है, और बेसिकली उस बॉलिंग के इनिशियल हाई पॉइंट के बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं इंडिया के लिए, ठीक ठाक रन बना लिए और काफी अच्छा खेले वो लोग, रिकवर अच्छा किया।
पर जब तक सचिन खेल रहे थे गेम में एकदम उम्मीद बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने तो डोमिनेट किया था शुरुआत में, वास को भी और मुरली को भी वो अच्छी तरह खेल रहे थे, पर एकदम से वी वर लाइक 90 ऑड With just one wicket down, और एकदम से downfall हो गया। मतलब पता ही नहीं चला कि ऐसी क्या फिरकी मारी पिच ने। कुछ लोग कह रहे थे कि उसके अंदर कुछ मैग्नेट बॉल के अंदर कुछ तो मैग्नेट लगा है या क्या लगा है कि जिस तरफ चाहते उस तरफ घूम जाती है।
हाँ, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ था कि सचिन तेंदुलकर स्टंप हुए और उसके बाद इंडिया बिल्कुल बिखर गई, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ, पर इस बार सरप्राइजिंगली स्विफ्ट तरीके से हुआ, 98 से 2 से 120 पे 8 हो गया, और देखते देखते पता नहीं चला कि पिच में क्या हुआ, बॉल ऐसी टर्न करने लगी। जयसूर्या जो कि ऐसे बड़े मायर स्पिनर नहीं माने जाते थे, वो भी आके स्पिन करा के बॉलर लोगों को आउट करने लगे।
जी हाँ, और कामली इसके बाद रोने लग गए थे।
यस ऐसे हंसना नहीं चाहिए किसी के रोने पे, पर आज इसमें हम एज अ किड हमें भी समझ में आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें, चलो ठीक है हम हार गए, बट भाई रो तो मत टीवी पे जाके। तो
पर इसमें एक बात मेरे को अभी तक काफी क्लियर नहीं है और मुझे शायद जाके पढ़ना चाहिए, बट आप दोनों को पता होगा कि ऑफिशियली हम किस तरीके से हारे थे, यानी रीजन क्या दिया गया था हमारी हार, क्या डकवर्थ लुईस था या फॉरफिट हुआ मैच या क्या तरीका था?
तो आज तो क्रिक इन्फो और क्रिक बस पे श्रीलंका वॉन बाय डिफॉल्ट लिखा होता है ऐसा, अब मुझे भी एक्चुअली क्लियर नहीं कि क्या रीजन था, बट आई थिंक इसके बाद हिस्ट्री में ऐसा हुआ एक दो बार और, बिकॉज ऑफ क्राउड डिस्ट्रप्शन एंड फॉर व्हाटएवर रीजंस, एक्चुअली जो भी टीम अहेड इन द गेम थी उनको दे दिया गया विक्ट्री। आई थिंक ये थोड़ा हम लोग कंफ्यूज भी थे उस समय कि क्या हो रहा है, कुछ जो हमारे बीच इंडियन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट क्रिकेट फैंस होते हैं वो ये कह भी रहते, अरे कोई बात नहीं, अभी काम भी तो है।
अगले दिन मैच दोबारा खेला जाएगा, वो अगले का अखबार पढ़ के ही पता चला कि हम हार गए।
अखबार तो सारे जला दिए गए थे लेकिन
यहाँ पर वैसे ओवरऑल एक इंडियन फैन, इंडियन क्रिकेट फैन की लाइफ का सबसे शर्मनाक मोमेंट था ये। ठीक है हम हारते बहुत है और हमें काफी कह रहा तो नहीं चाहिए, पर आदत भी थी इस समय तक सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद हार जाने की, पर जिस तरह से हमने रिएक्ट किया वो काफी शर्मनाक था और हमने हमें रियलाइज भी हुआ। और इवन एज अ किड ऐसा फील हो रहा था कि यार नहीं यार वी वर बेसिकली सोर लूजर्स एंड ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, और थैंकफुली इसे कभी दोबारा हुआ नहीं।
वैसे अगर गली क्रिकेट के रूल के हिसाब से सोचा जाए तो इंडिया को अपना बैट लेके ही भाग जाना चाहिए था। वो भी एक तरीका हो सकता था।
आई थिंक ये जो हम गली क्रिकेट के रूल्स पे वापस आ जाते हैं ये मुझे काफी अच्छा लगता है। वी शुड कंटिन्यू डूइंग दैट।
जी हाँ जी हाँ। तो अच्छा ये मैच तो काफी यादगार रहा अच्छे बुरे कारणों के लिए, बट राहुल आप बात करना चाहेंगे और कुछ जो रोचक क्षण हुए? आपने शुरू में कुछ टॉपिक्स ले डाउन किए थे उनके बारे में।
जी हाँ, साउथ अफ्रीका जो कि डोमिनेंट टीम थी ग्रुप स्टेजेस में, 5 के 5 मैच उन्होंने जीते। गैरी कर्स्टन ने उस समय का वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बनाया, एकदम
आई थिंक ऑलराउंड ओडीआई का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी था वो 184।
हां उस समय का आखिरी हाईएस्ट स्कोर था। नीदरलैंड्स और यूएई दो नई टीम आई थी जो कि ग्रुप बी में थी, जिनको सर टीम ने हरा दिया, तो एकदम वो पप्पू टीम थी उस वर्ल्ड कप की।
ये आपने बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड यूज किया बट
जी हाँ जी हाँ। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ।
जी हाँ न्यूजीलैंड की टीम जो कि फिर से ग्रुप बी में थी, उनका सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। काफी ये इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल था जो कि चेन्नई में खेला गया। मैच में मुझे याद है क्रिस हैरिस ने अपनी 1 and only सेंचुरी मारी थी, पर अल्टीमेटली न्यूजीलैंड हार गई ऑस्ट्रेलिया से। तो बात पहुंची सेमीफाइनल पे जो एक और काफी इंटरेस्टिंग मैच था। अल्टीमेटली इस गेम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बुरी रही, उनके 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। गेम मोहाली में खेला गया था और वेस्ट इंडीज पेस बैटरी बिल्कुल फिर से अपना प्रेशर और अपनी जिसके लिए वो विख्यात थी वो एकदम दबदबा बना रही। पर
जी हाँ।
इसी समय इस गेम में माइकल बेवन ने एक बड़ी यादगार पारी खेली जिसके लिए वो फिर 90s में जाने लगे। सी टैंकर रोल खेलते हैं और इन तक आउट नहीं होते, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया। 205 करे थे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने इस गेम
207 रन बनाए थे उन्होंने। जी
जी हाँ। और माइकल बेवन ने क्रिकेट को एक और रोचक चीज दी थी, आई थिंक वो पहले एटलीस्ट हमारी मेमोरी में पहले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, और उसके बाद पॉल एडम्स थे जो आए थे, जो आपको याद होगा अगर हम अगर हम उन बॉलर्स की फिर से लाइन लगाएं विच इज अर्शद खान राजेश चौहान जिसमें हम गरबा डांडिया की बात कर रहे थे उसमें पॉल एडम्स कैन बी
पॉल एडम्स का नाम भी है। बिल्कुल पॉल एडम्स तो बिल्कुल माइकल जैक्सन थे उस लाइनअप के।
बिल्कुल कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
आई थिंक वो देखते भी नहीं थे स्टंप्स की ओर जब वो बॉल करते थे, उनकी आई साइट आई थिंक लॉन्ग ऑन सॉरी स्क्वायर लेग या पॉइंट की तरफ होती थी कई बार जब वो एंड करते थे, तो बहुत ही मुश्किल था।
बिल्कुल जैसे देवाशीष मोहंती किस हाथ से बॉल फेंकेंगे पता नहीं पड़ता था, पॉल एडम्स किस दिशा में फेंकेंगे पता नहीं पड़ता
था। तो काफी रोचक सेमीफाइनल बन रहा था वो। इट वॉज वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छी शुरुआत की थी, पर शेन वॉन ने उस मैच में अपना फेयर अनाउंसमेंट किया
बिल्कुल
आगे जब तक इंडिया गेंस नहीं खेलेंगे तो वो तो टॉप स्पिनर है ही वर्ल्ड के।
बिल्कुल बिल्कुल
आई थिंक 5 विकेट लिए थे उन्होंने कि 4 विकेट लिए थे इस मैच में।
आई थिंक 4 विकेट लिए थे उन्होंने मैच में।
मुझे तो लगता है उन्होंने शायद पुदीन हरा खा लिया होगा पिछले मैचेस और इसके बीच ताकि उनका पेट थोड़ा ठंडा हो गया होगा और काफी ठंडक से गेंदबाजी की। और उस टाइम अगर आप याद करें तो मार्क टेलर कप्तान थे, इयान हीली मार्क टेलर और शेन वॉन का एक गैंग होता था, और कहा जाता था कि मार्क टेलर के और मार्क टेलर के अगले सक्सेसर शेन वॉन ही होंगे, कई लोग मानते थे ऐसा। उस समय उस मैच में लोगों को लगा भी था कि ये वो क्षण है जहाँ पे बेसिकली मार्क टेलर इज पासिंग द बैटन टू शेन वॉन एज द नेक्स्ट कैप्टन, बट उसके बाद स्टीव वॉ बने। पर शेन वॉन के कुछ अंतरंग किस्से भी हुए जिसके कारण शायद उन्हें कप्तानी नहीं मिली, पर आई थिंक ये उनके कैरियर का हाई पॉइंट था और बहुत ही बढ़िया मैच था।
और मैच के एंड में हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि वेस्ट इंडीज जीत सकती थी, क्योंकि मुझे याद है आखिरी बैट्समैन कर्टली एम्ब्रोज और रिची रिचर्डसन खेल रहे थे और आखिरी ओवर से जस्ट पहले रिची रिचर्डसन ने स्लॉग स्वीप किया जो गेंद बाउंड्री की तरफ निश्चित तौर से जा रही थी पर स्क्वायर लेग एम्पायर मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, शायद वेंकट राघवन थे, उनके माथे पे जाकर गेंद
लगी। यस यस आई रिमेम्बर।
वेस्ट इंडीज शायद फाइनल में पहुंच जाती है और शायद इस वर्ल्ड कप का रुख कुछ और होता, पर अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई फाइनल में।
हाँ, वैसे भी 5 रन या 4 रन से ही जीते थे।
काफी करीबी मामला था,
काफी करीबी मामला था। और वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग गेम्स था इस वर्ल्ड कप का। रिचर्डसन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट वो नॉट आउट ही थे बेचारे एंड तक, और एकदम से 200 रन पे सिमट गए। तो इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बड़ी स्ट्रेंज बात थी ये थी कि इसमें किसी भी टीम का मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग था ही नहीं। आई थिंक इसीलिए स्ट्रेंथ थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसमें माइकल बेवन और एक और खिलाड़ी थे जिनका नाम था स्टुअर्ट लॉ, इन लोग 2-3-4 टीम्स में था जिसमें कुछ मिडिल ऑर्डर था, बट बाकी सारी टीम्स का मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर था। तो इसमें भी वेस्ट इंडीज के साथ यही हुआ, आई थिंक 150-170 में कुछ उनका चौथा विकेट गिरा और उसके बाद 200 पे ऑल आउट ही हो गए वो बेचारे।
पर श्रीलंका का आई थिंक सही था मिडिल ऑर्डर, डिसिल्वा थे और रणतुंगा थे। आई थिंक श्रीलंका भी,
श्रीलंका भी उस टीम्स में थी जिनका, यू आर राइट, बिकॉज जो सेमीफाइनल में भी 2 विकेट पहले ही ओवर में आई थिंक 1-for-2 हो गया था उनका, तो ऐसा कुछ हुआ था पहले।
बिल्कुल बिल्कुल,
3 विकेट लूज करने के बाद भी उन्होंने 250 रन बना दिए थे।
बिल्कुल। एक और रोचक मैच वैसे मुझे याद आ रहा है राहुल, इस विश्व कप का, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, विच इज कीनिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की आप बात करें तो कीनिया की पहली जीत हुई थी, काफी महान क्षण था, पुणे के मैदान पे ये गेम हुआ था। और कीनिया की टीम काफी भारतीय पॉलिटिकल फैमिलीज की तरह है, 2-3 फैमिली पूरा गेम चला रही थी। तो कुछ गुजराती भाई थे, एक सूजी या रवा थे कोई, और मार्टिन सूजी थे। हाँ, तो एक 4-5 टिकोलो थे और 4-5 उडुम्बे थे, उडुम्बे टीम बन जाते हैं। तो आई थिंक मॉरिस उडुम्बे उस टीम टिकोलो में से एक कप्तान थे, इंटरचेंजेबल थे। हाँ, आई थिंक कोई भी बन जाता था कभी भी, आई थिंक अगले 6-7 सालों तक वही रहे। और कीनिया का इतिहास भी रहा है, ईस्ट अफ्रीका होता था कीनिया और गुजराती माइग्रेशन काफी रहा है वहां पे। तो फिर से हमने दीपक पटेल के सक्सेसर देखे इस विश्व कप में, मोदी जी के गुजरात से निकले हुए, आई थिंक कोई शाह थे टीम में, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर दो तीन गुजराती भाई थे, 3-4 उडुम्बे, 3-4 टिकोलो, टीम को गिनना काफी आसान था बेसिकली।
यार काफी काफी अच्छा मैच उन्होंने खेला। मुझे याद है मैं स्कूल से आया था और देखा कि मुझे लगा शायद गेम चल रहा होगा अभी भी, पर देखा कि कीनिया की टीम विक्ट्री लैप ले रही थी ग्राउंड का। तो बिल्कुल वेस्ट इंडीज के लोग, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, पता नहीं लग रहा था कि वो शायद नॉकआउट ही ना हो जाए ग्रुप स्टेजेस में, पर अल्टीमेटली वो क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को भी वॉकओवर दे दिया था एक गेम में, पर अल्टीमेटली वो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेजेस में हराकर लेटर स्टेजेस के लिए क्वालिफाई कर।
बस पुणे का ग्राउंड ऐसा है, मुझे आगे कोई मैच याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कोई ऐतिहासिक और गेम हुआ है कि नहीं पुणे का, और कोई गेम याद नहीं। बट ग्राउंड की बात करें तो एक चीज जो थी कि इंडिया के सारे ग्राउंड काफी इम्प्रूव हुए थे, और एक जो हमारी आज के डेट में जो फील्डिंग काफी इम्प्रूव मानी जाती है, एक रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे फील्डर्स, आई थिंक उसका काफी बड़ा कारण यही था कि इस विश्व कप में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ, सारी पिचेस काफी सुधरी, ट्रेनिंग पिचेस सुधरी, इंफ्रा काफी बढ़ा, ग्राउंड पे भी फैसिलिटी शायद इंप्रूव हुई, इनफैक्ट इतनी शायद इंप्रूव ना भी हुई हो। आई थिंक अब आईपीएल आते आते तक पिज्जा हट की डिलीवरी चालू हो गई है, पर हम जब 11 में विश्व कप देख रहे थे, अगर आपको याद होगा 40वें ओवर तक पानी खत्म हो चुका था, बाथरूमों में भी पानी नहीं था, तो वो तो खैर चीजें टाइम लेती हैं। पर जनरल ग्राउंड पे घास काफी अच्छी आ गई थी, लोग थोड़ा डाइव मारने लगे थे, तो और जॉन्टी रोड्स वापस आए थे इस विश्व कप में, भले ही जल्दी गए, पर वो सब चीजें आई थिंक फील्ड को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव की।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वर्ल्ड कप इंडिया में 17 गेम हुए और सारे 17 गेम अलग अलग वेन्यू पे हुए, तो थ्रू आउट द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। पहली बार मेरे ख्याल से वांखड़े में फ्लड लाइट्स लगी, चेन्नई में फ्लड लाइट्स, बैंगलोर में फ्लड लाइट्स, इसी वर्ल्ड कप के कारण लगी। इससे पहले हमारे यहाँ शायद सिर्फ ईडन गार्डन्स और मोहाली में ही फ्लड लाइट थी। तो ओवरऑल
जी हाँ, हीरो कप में लगी थी,
जी हाँ,
गार्डन में पहली बार फ्लड लाइट।
बस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए हम पहुंच गए फाइनल की, और फाइनल हुआ पाकिस्तान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। काफी इंटरेस्टिंग फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था श्रीलंका जाने से, तो थोड़ा श्रीलंका के खिलाड़ियों में रोष था कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बल्लेबाजी की, तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा शुरुआत में थोड़ा सा भारी रहा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टीम चेस करते हुए फाइनल नहीं जीती। शुरुआत में कहा जा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई है, बैटिंग कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, पर उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ही बनाया, 240 और चेस करते हुए फाइनल में मुश्किल ही होता है। और
श्रीलंका ने टॉस जीता था और बॉलिंग ली थी, मेरे को जितना याद है।
अच्छा, शायद मेरे
बिकॉज़ श्रीलंका ऑलवेज आई थिंक वांटेड टू चेज दिस इज द होल स्ट्रेटजी दैट दे कि हम चेज ही करेंगे वी विल बेसिकली डू आवर बेस्ट एंड देन वी विल पेस आवरसेल्व्स बिकॉज़ वी हैव दिस यंग प्लेयर जिसको हमने फुल लाइसेंस दिया हुआ है पहले 15 ओवर का तो हम चेज ही करेंगे
और यहाँ इस मैच में थोड़ा सा और इतिहास में ऐड करना चाहूंगा जो ऑस्ट्रेलिया में रणतुंगा और एम्पायर्स के बीच जो अनबन हुई थी ये सीरीज उसके बाद हो रही थी राइट तो जो मुरलीधरन की गेंदबाजी पे जो शक उठाया गया था वो आई थिंक इस विश्व कप के पहले ही हुआ था
तो श्रीलंका की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही जयसूर्या रन आउट हुए थे बहुत ही कम स्कोर बनाया था उन्होंने मेरे जहां तक मुझे याद है और वो रन आउट हुए थे तो काफी टच एंड गो वाला मामला था उस वो रन आउट देख के मुझे पहली बार पता चला कि लाइन बिलोंग्स टू द एम्पायर तो यस याद है कमेंट्री में कहा गया था कि थर्ड एम्पायर ने वो 18 या 19 बार रिप्ले देखकर उसको रन आउट घोषित किया उसके बाद जयसूर्या के आउट होने के बाद मेरे ख्याल से हमने वर्ल्ड कप की सबसे सबसे सुलझी हुई और सबसे ऐतिहासिक पारियों में से एक देखी जो डिसिल्वा ने 100 मारा मेरे ख्याल से बिल्कुल रिस्क फ्री टोटली इन कमांड उन्होंने स्टीयर किया श्रीलंका को पीछे की तरफ इस गेम के बाद अगले दिन जब हम पूल पहुंचे तो लोग कह रहे थे कि श्रीलंका के सारे खिलाड़ी रावण रावण की पूजा करके गए थे तभी वो
ये जो 90s का माहौल था जिसमें हर मैच लोकल वीडियो में इंटरप्रेट होता था वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था
बिल्कुल बिल्कुल
वर्ल्ड कप के टाइम वो बात फैली थी ना कि जयसूर्या के बैट के अंदर स्प्रिंग लगे
हैं जी हाँ और ये भी कहा गया था कि बेनजीर भुट्टो ने सबको बिरयानी बना के खिलाई और बिरयानी का प्रयोग तो अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति में काफी होता है पर बोला गया था कि रणतुंगा की टीम जब जीती तो बिरयानी बनाकर खिलाई बेनजीर ने सबको अपने हाथों से और सबसे ज्यादा बिरयानी ऑब्वियसली रणतुंगा ने ही खाई तो ये भी बात होती है बट अब प्लेयर्स की बात करें तो आई थिंक डिसिल्वा मेरे हिसाब से ऑल्दो जयसूर्या को मैन ऑफ द सीरीज वगैरह मिला था इस सीरीज में और ऑब्वियसली इम्पैक्ट काफी था बट डिसिल्वा सारे क्रूशियल मोमेंट्स पे सबसे अच्छा खेले थे मेरे हिसाब से और डिसिल्वा के बारे में एक और रोचक बात यह है कि उनके दोनों पैर अलग साइज के थे उनका जूता बनाना काफी मुश्किल काम माना जाता था जी हाँ तो साइज एक पैर का साइज कुछ और था दूसरे पैर का साइज कुछ और था तो ये काफी रेयर होता है आई थिंक अरविंदा डिसिल्वा ने काफी अच्छा खेला इस पूरे वर्ल्ड कप में
वैसे वो कर सकते थे कि एक जूता ट्राई करने जाएं और भाग जाएं और दूसरे शो में जाकर दूसरे साइज का जूता निकले
वैसे उनको एक और दिक्कत हो सकती थी कि अगर उनकी शादी में उनकी सालिया उनके जूते चुराती तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन उभर सकता था पर क्या इस जमाने में हम आपके कौन आए हुए 2 साल हो चुके थे तो आप मान सकते हैं कि हो सकता है श्रीलंका में भी जूते चोरी की प्रथा आ गई हो
श्रीलंका में अगर आपको याद हो सबसे पॉपुलर गाना जो वहां के ब्रास बैंड बजाते थे वो था देखा है पहली बार सजन की आंखों में प्यार ये गाना ये माधुरी का ही गाना है तो काफी पॉपुलर रही माधुरी श्रीलंका खैर काफी काफी रोचक वर्ल्ड कप था रणतुंगा की इंस्पिरेशनल कैप्टेंसी श्रीलंका में जयसूर्या और कलू की ओपनिंग शेन वॉन का और सचिन का अनाउंस करना अपना आना इंडिया के लिए पॉजिटिव ये रहे कि तेंदुलकर हाईएस्ट स्कोरर थे वर्ल्ड कप के और कुंबले ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी 15 विकेट ली थी मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा पॉजिटिव था बट जिस तरह से हम नॉकआउट हुए वो थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला क्षण था
हाँ अगर हम जैसे बाकी सब टीम्स हारी अपना अपना गेम और मैच कंप्लीट हुआ 10 रन से हार गए 15 रन से हार गए वुड हैव बीन रिस्पेक्टेबल ऑफ कोर्स दुख तो तब भी होता बट जिस तरीके से हमने एग्जिट किया और मैच भी खत्म नहीं हुआ वो काफी शर्मनाक था और वही हमारी मेमोरी में एक्चुअली आज की डेट में 96 वर्ल्ड कप इज नॉट इट शुड हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव बिकॉज़ सो मेनी न्यू थिंग्स हैपेंड बट वो इट जस्ट इतना बड़ा ब्लॉट था कि वो रह गया
तो बस यही सफर था इस वर्ल्ड कप का आशा है आपको एपिसोड अच्छा लगा अब हम वापस जाते हैं एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि दिलीप वेंगसरकर जो कि लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स के नाम से भी जाने जाते थे उनका निकनेम कर्नल कैसे पड़ा तो उज्जवल देसी कुछ जवाब आपके पास
मुझे पता है पर मैं आपको आई विल गिव यू द प्लेजर ऑफ एजुकेटिंग मी
तो खैर वेंगसरकर ने अपना फर्स्ट क्लास में दिलीप ट्रॉफी डेब्यू था मेरे ख्याल से वो उन्होंने नागपुर में किया था और नागपुर का ग्राउंड जाना जाता है उसके पास एक चर्च होती थी तो उन्होंने खूब लंबे लंबे छक्के मारे उस मैच में तो लोकल रिपोर्टर जो वहां पे थे उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल कर्नल सी के नायडू की तरह खेलते हैं जो जो कि अपने लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं तो सी के नायडू जो कि इंदौर के महाराजा के दरबार में कर्नल की उपाधि उनको ऑनररी दी गई थी, तो इस स्कूल के पे वेंग सरकत का निकनेम कर्नल पड़ गया। कहा जाता है कि उनको ये निकनेम पसंद नहीं है पर चल गया। उम्मीद है आप सबको एपिसोड पसंद आया होगा। ये एपिसोड आप सबके फेवरेट पॉडकास्ट ऐप पे उपलब्ध रहेगा। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे 99, 2003, 7, 11 और 15 के वर्ल्ड कप के बारे में। प्लीज अपना फीडबैक हमें भेजिए। उम्मीद है आप आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद।